जीवन लंबे होने की बजाय महान होना चाहिए। ये अनमोल शब्द हैं अद्वितीय प्रतिभा के ध्वनि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनकी 132वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। इस अंक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को हम जानने का प्रयास करेंगे, जो आधारित है बीपी श्रीवास्तव की चित्रकथा पर। नमस्कार। अंबेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, जिसे अब मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के मऊ में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। वे माहर जाति से संबंधित थे, जो दलित कही जाती थी, और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव होता था। स्कूली पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सक्षम होने के बावजूद भीमराव को अस्पृश्यता के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। रामजी सकपाल ने अपने बेटे को भीमराव का उपनाम सकपाल की जगह आंबेडकर लिखवाया। बाद में एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने अपना नाम अंबेडकर उनके नाम से जोड़ दिया। आज भी भीमराव अंबेडकर अंबेडकर नाम से ही जाने जाते हैं। अंबेडकर एलिफस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले दलित छात्र बने। भीमराव को 6 भारतीय और 4 विदेशी भाषा यानी कुल 10 भाषाओं का ज्ञान था। सन 1913 में संयुक्त राज्य के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भीमराव अंबेडकर का चयन हुआ। इसके लिए उन्हें प्रति माह की छात्रवृत्ति भी मिली। 1916 में उनके एक शोध के लिए पीएचडी से उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टरेट की डिग्री लेकर 1916 में डॉक्टर अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्हें ग्रेजिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून का अध्ययन और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट शोध की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवाया। अगले वर्ष छात्रवृत्ति की समाप्ति के चलते मजबूरन उन्हें अपना अध्ययन बीच में छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत निराश हुए। अपनी नौकरी छोड़कर वे निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो दलित होने के कारण विफल रहा। एक अंग्रेज लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें बम्बई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। भारत सरकार अधिनियम 1913 तैयार कर रही थी। साउथ बोरो समिति के समक्ष भारत के प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों व अन्य धर्म समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित वर्गों में शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। उन्होंने पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू की और उसके लिए रिक्रिएशन उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संस्थान समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के लिए और दलित को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने का संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लिए ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की, जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही कोई दखल ना हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अस्पृश्य समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए दलितों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, तब गांधी जी ने उनके विरोध में पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। सामाजिक अशांति की आशंका और गांधी जी के समर्थकों के भारी दबाव के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पृथक निर्वाचिका की मांग वापस ले ली। इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार असली महात्मा ज्योतिबा फुले थे। 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया और उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें थीं। 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान की रचना करने के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पे नियुक्ति दी गई। अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान पाठ में संवैधानिक गारंटी के साथ नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, ये लचीला है, पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय में जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ, अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य असक्षम था। भारतीय संविधान को भारत का राष्ट्र ग्रंथ माना जाता है तथा ये विश्व की महानतम किताबों में से एक है। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे के उत्तराधिकार विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात की गई थी। सन 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अंबेडकर का स्वाद बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान लगातार काम करने ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर जी का निधन दिल्ली में हो गया और मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। ये जानकारी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक सफलतम और प्रेरणादायक जीवन की। इसी के साथ ये अंक यहीं समाप्त होता है। मेरा नाम कृष्णा है। नमस्कार।